स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 9 दिसंबर दिन शुक्रवार, सीरियाई सेना ने पूर्वी एलेप्पो में लड़ाई रोकी, राहुल गांधी ने मोदी पर किया तीखा हमला।
नाउ ही इज मूव्ड टू द कैशलेस इकोनॉमी, देयर इज द होल कांसेप्ट ऑफ द पेटीएम, पे टू मोदी, दैट्स द आईडिया बिहाइंड कैशलेस इकोनॉमी।
नोटबंदी का एक महीना हुआ पूरा, अर्थव्यवस्था की हालत पर लेंगे एक नजर। बिहार में दूसरी सरकारी जबान होते हुए भी उर्दू क्यों है बदहाली की शिकार?
पॉलिटिकल लेवल पे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजन था, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और जमीन पर उतारने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए उसमें कभी सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया।
और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। रूस ने कहा है कि सीरिया की सेनाओं ने पूर्वी अलेप्पो में विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष रोक दिया है ताकि हजारों की संख्या में आम नागरिक वहां से निकल सकें। हालांकि अलेप्पो के इलाके में मौजूद बीबीसी संवाददाता के अनुसार संघर्ष में थोड़ी कमी है, लेकिन लगता नहीं है कि लड़ाई पूरी तरह रुक गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत का कहना था कि संघर्ष को रोकने से शांति वार्ताएं शुरू हो सकती हैं। अमेरिका ने सीरिया में लड़ाई रोके जाने की रूस की घोषणा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जोस अर्नेस्ट का कहना था, हमारा रुख शुरू से यही रहा है कि हम उन बातों को ध्यान से सुन रहे हैं जो रूस कह रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि वो जमीन पर क्या करते हैं। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि जमीन पर स्थिति कैसे बदलती है। भारत सरकार ने 1,00,000 गांवों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीद बिक्री के लिए 2 मशीनें लगाने की घोषणा की है। ये मशीनें उन गांवों में लगेंगी जहां की आबादी 10,000 से अधिक है। यह कदम भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई कदमों में से एक है। इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो लोग कार्ड के जरिए ट्रेन टिकट और पेट्रोल खरीदेंगे उन्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। एक महीने पहले भारत सरकार ने 500 और 1,000 के पुराने नोटों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से कैश की व्यापक तौर पर कमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया के 1/4 किशोर बच्चे उन देशों में रह रहे हैं जो संघर्ष, संकट या प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। संस्था के अनुसार सब सहारन अफ्रीका के देशों में रह रहे बच्चे सबसे अधिक परेशानी की हालत में हैं, जहां उनके पास न तो सुरक्षा के साधन हैं और न ही पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधा, शिक्षा या भोजन ही है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि 1990 के बाद से 5 साल से कम की उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। अमरीकी सेना का कहना है कि पिछले 2 साल में इराक और सीरिया में अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेनाओं की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के कम से कम 50,000 लड़ाके मारे गए हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार ये संख्या अधिक भी हो सकती है। उनका कहना था कि आंकड़ों के अनुसार जमीन पर कम से कम अमरीकी सैनिक उतारने और अधिकतर हवाई हमले करने की नीति कारगर साबित हो रही है। अमेरिका के पूर्व सांसद और अंतरिक्ष यात्री रहे जॉन ग्लेन का निधन हो गया है। जॉन ग्लेन पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी थे। 95 साल के ग्लेन उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से थे जिन्होंने 1962 में फ्रेंडशिप कैप्सूल में पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए थे। आगे चलकर ग्लेन अमेरिका के सांसद बने और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 9 तारीख और दिन है शुक्रवार। कार्यक्रम की शुरुआत सीरिया से। सीरिया की सेना ने पूर्वी एलेप्पो में जारी अपने अभियान को रोक लिया है ताकि युद्ध क्षेत्र में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अमेरिका ने रूस के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वो इस पर नज़र रखेंगे। अमेरिका और रूस इस विषय पर शनिवार को बात करने पर भी सहमत हो गए हैं कि सीरिया में चल रहे संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए सुशील झा से।
रूस के राष्ट्रपति सरगेई लवरोफ ने कहा है कि सीरिया की सेना ने पूर्वी अलेप्पो में अपनी कार्रवाई रोक दी है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लवरोफ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कम से कम 8,000 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे। उनका कहना था।
मैं
आज ये कह सकता हूँ कि सीरिया की सेना ने पूर्वी अलेप्पो में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद की है, क्योंकि पूर्वी अलेप्पो में उन लोगों को निकालने का सबसे बड़ा और ताजा अभियान चल रहा है जो वहां से निकलना चाहते हैं। सर्गेई लेवरोफ के शब्द। सीरिया की सरकारी सेनाओं ने पिछले कुछ हफ्तों में पूर्वी अलेप्पो के 75% से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। पिछले 4 वर्षों से ये इलाके विद्रोहियों के कब्जे में थे। अमेरिका ने सीरिया की सेना के संघर्ष रोकने के फैसले का स्वागत किया है, पर कहा है कि अभी वो इंतजार करेंगे और देखेंगे कि जमीन पर क्या होता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के अनुसार अमेरिका का रुख यही है कि उन बातों को ध्यान से सुना जाए जो रूस कह रहा है, लेकिन उनकी कार्रवाई पर नजर भी रखी जाए। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि शनिवार को रूस और अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ जेनेवा में बैठकर उन तरीकों पर बात करेंगे जिससे अलेप्पो में हिंसा को खत्म किया जा सके। इस बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक और प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रूडो ने इसकी पुष्टि की और कहा कि लेवरोफ और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के बीच बातचीत हुई है। उनका कहना था,
They agreed to continue discussions about establishing a framework for a ceasefire.
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि युद्ध विराम का एक फ्रेमवर्क बने जिससे राहत सामग्री पहुंचाने और जो लोग शहर छोड़ना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम हो सके। शनिवार को टेक्निकल बातचीत होनी है, लेकिन इस पर अभी और चर्चा हो रही है। उधर अमरीकी सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में इराक और सीरिया में अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन की सैन्य कार्रवाइयों में इस्लामिक स्टेट के 50,000 से अधिक लड़ाके मारे गए हैं। अमरीकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि ये आंकड़े कम अनुमान के आधार पर रखे गए हैं। उनका कहना था कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि विमानों के जरिए मार करने और कम से कम अमरीकी सैनिकों को जमीन पर उतारने की रणनीति इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कारगर रही है।
ये थे सुशील झा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात भारत की। नोटबंदी के फैसले को 1 महीना हो गया है और इसको लेकर राजनीतिक गतिरोध अब भी जारी है। सरकार इसे भ्रष्टाचार और चरमपंथ के खिलाफ उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम बताते हुए नहीं थक रही है, तो विपक्ष सरकार के किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर देती है। संसद से लेकर सड़क तक दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पेटीएम का मतलब पे टू नरेंद्र मोदी हो गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल भुगतान की वकालत कर रही है और इसके लिए जो एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है डिजिटल भुगतान की सहूलत देने वाली निजी कंपनी पेटीएम। सुनिए रोहित जोशी की ये रिपोर्ट।
नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने के बाद भी जितनी उथल पुथल बाजार और आम जनजीवन में दिखाई दे रही है, उतनी ही उथल पुथल राजनीतिक गलियारों में भी दिखाई दे रही है। कल संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास समूचे विपक्ष ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर पेटीएम का मतलब पे टू मोदी है।
He's running one after the other. He's running, and we're going to catch him inside the house. He's not going to be able to run inside the house. Now he's moved to the cashless economy. There's the whole concept of the PayTM, Pay to Modi. That's the idea behind cashless economy.
Rahul Gandhi ke is bayan ka Kendriya Mantri Venkaiya Naidu ne jawab diya.
Maine abhi suna aapka neta ne kaha ye pagal nirnay hai, foolish decision. Fighting against the corruption, is it foolish? Fighting against black money, is it foolish? Taking action against the Black money holders, is it foolish? Taking action against the corrupt people, is it foolish?
भारी हंगामे के बीच सदन के दोनों सदनों को गुरुवार को भी कई बार स्थगित करना पड़ा। संसद के निचले सदन लोकसभा में गुरुवार को एक बार फिर नोटबंदी पर वोटिंग के साथ चर्चा की मांग उठी। विपक्षी दलों ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति की मांग भी की। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। उधर राज्यसभा में भी नोटबंदी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बरकरार रहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद पर यह कहकर निशाना साधा कि विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है और जब सरकार जवाब देने की कोशिश करती है तो वे सुनते तक नहीं। गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह नाकाम बताया।
ये पूरी स्कीम फेल थी और इस स्कीम ने तबाही और बर्बादी के बगैर और कुछ नहीं किया। दिस स्कीम वाज टोटली डिजास्टर। काले धन के खिलाफ सब राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर वन मैन पार्टी तक विपक्ष की सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ।
उधर संसद में जारी गतिरोध पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सदन धरना प्रदर्शन और ऐसी बाधा पैदा करने की जगह नहीं है जिसमें अल्पमत द्वारा बहुमत की आवाज दबा दी जाए। राष्ट्रपति ने सांसदों को बताया कि विपक्ष का काम सदन को बाधित करना नहीं बल्कि चर्चा और कामकाज करना है। उधर शाम होते होते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद सरकार की ओर से किए गए 11 अहम फैसलों का ऐलान किया। इसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन करने पर भारी छूट देने की घोषणाएं थी।
सरकार प्रयास करती रही है और बैंकिंग व्यवस्था भी प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स और जितने भी अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिजिटल करेंसी हैं उनको इनकरेज किया जाए और बहुत बड़े पैमाने में इस एक महीने में ये स्विच ओवर होता हुआ दिख रहा है और इसलिए सरकार इस स्विच ओवर को और तेज करना चाहती है। एक तरफ लेस कैश इकोनॉमी होगी जिसके लिए धीरे धीरे रोज एक करेंसी रिलीज करता है रिजर्व बैंक और दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा और शिफ्ट होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को बताया है कि हर 10,000 की आबादी वाले गांव में 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। डीजल और पेट्रोल डिजिटल तरीके से खरीदने पर 0.75% छूट मिलेगी। रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर भी 1 जनवरी से 0.5% की छूट मिलेगी।
ये थे रोहित जोशी। 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद से आम लोग यही बात करते हुए नजर आते हैं। 500 और 1,000 के कितने नोट बाजार में थे, कितने एटीएम हैं, कितने पैसे किसमें मिल रहे हैं, कौन एटीएम खाली है, एटीएम और बैंकों की कतार कम होगी, 500 का नया नोट कब आसानी से मिलने लगेगा, कहीं 2,000 का नया नोट तो बंद नहीं हो जाएगा। इस तरह के ढेर सारे सवालों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी रोहित जोशी और तृप्ति श्रीवास्तव।
नोटबंदी के बाद से कितने रुपये की कीमत के नोट बेकार हो गए?
आरबीआई, सीएमआई और एनसीआर के मुताबिक 500 और 1,000 के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद से कुल 15.5 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए हैं। 500 और 1,000 के जितने नोट सर्कुलेशन से हटाए गए हैं वो कुल नकदी अर्थव्यवस्था का 86% है।
500 और 1,000 के बेकाम हो गए कितने नोट अब तक बैंकों में वापस आए हैं?
यह आंकड़ा 11.5 लाख करोड़ का है। अभी लगभग 3 हफ्तों का समय बाकी है और अंदाजा है कि 14 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों में जमा हो जाएंगे।
तो इस फैसले से कितना काला धन छटेगा?
क्योंकि 15.5 लाख करोड़ के नोट बेकार हो गए हैं और 14 लाख करोड़ के नोट वापस बैंकों में आ जाने का अनुमान है। इसका मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपया वो कथित काला धन है जो छट जाएगा, जबकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ की छटाई का था।
भारत में कुल एटीएम कितने हैं?
भारत में 2 लाख से अधिक एटीएम हैं, लेकिन नोटबंदी की शुरुआत में ये इसलिए बेकाम हो गए थे क्योंकि इनमें नए नोटों के आकार के लिहाज से बदलाव नहीं किए गए थे।
नए नोटों के लिहाज से कितने एटीएम्स का हुआ है रिकैलिब्रेशन?
आधिकारिक दावों के मुताबिक भारत में मौजूद कुल 2 लाख से अधिक एटीएम मशीनों में से करीब 90% में नए नोटों के हिसाब से बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी इसका मतलब ये नहीं है कि उन मशीनों में पर्याप्त नकदी मौजूद है। इसलिए आप अपने आस पड़ोस के एटीएम्स में देख सकते हैं कि या तो लंबी लाइनें हैं या कई एटीएम अब भी काम नहीं कर पा रहे हैं।
बाजार में कितने नए नोट आ गए हैं?
जो 19 अरब नए करेंसी नोट बाजार में लाए गए हैं उनकी कीमत बाजार से हटाई गई मुद्रा का 1/3 भर है। सरकारी नोट प्रिंटिंग प्रेस रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी नकदी हटाई गई है उसे नए नोटों में वापस लाने में महीनों का समय लगेगा।
नोटबंदी की कवायद में हुए खर्च और अब तक इससे हुए नुकसान की कुल कीमत क्या है?
सीएमआईई के आंकलन के मुताबिक इसकी कुल कीमत 1.2 हजार करोड़ रुपए की है, जिसमें आर्थिक लेनदेन और रोजगार को हुए नुकसान के अलावा नए नोटों की छपाई की लागत भी शामिल है।
तो ये थे रोहित जोशी और तृप्ति श्रीवास्तव।
बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
तो जैसा कि आपने सुना, ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 8 नवंबर की शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संदेश में घोषणा कर रहे थे कि 500 और 1,000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसको आज 1 महीने पूरे हो गए हैं, आज है 9 दिसंबर। उस वक्त प्रधानमंत्री ने बात करते हुए 3 बातें कही थी, काला धन, भ्रष्टाचार और चरमपंथ। तो उन मुद्दों पर कितनी सफलता मिली है सरकार को, उनके दावे कितने सही साबित हुए हैं या गलत साबित हुए हैं, यही जानने के लिए हमारे साथी रोहित जोशी ने बात की आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला से।
भाई देखिए, मैं तो इस फैसले के प्रति मूल रूप से नकारात्मक हूँ, क्योंकि इस फैसले का जो मुख्य उद्देश्य था वो काले धन के ऊपर प्रहार था, और जिसमें मैं मानता हूँ कि ये फैसला मूल रूप से असफल रहा है। इसके कारण आम आदमी को तकलीफ ज्यादा हुई है, और बड़े लोगों ने जो वास्तव में काला धन रखते हैं, उन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया है इसको मूल रूप से रिसाइकिल करने का।
बाजार में क्योंकि मुद्रा का अभाव हो जाने से आर्थिक गतिविधियां तो काफी चरमराई हैं, तो देश के अगर समूचे अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो क्या नफा नुकसान होना है आने वाले समय में इस फैसले से?
मेरा मानना है कि मुद्रा के अभाव से जो नुकसान हुआ है वो तो कम हुआ है, क्योंकि जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं वो मुद्रा आधारित नहीं है। कंपनियों के, मैंने कुछ बड़ी कंपनियों के मालिकों से बात की तो उनको कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है। जो अंतर पड़ रहा है वो छोटे उद्योगों को पड़ रहा है, और वो सही है, लेकिन उनका देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा छोटा है और उसका भी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुद्रा के अभाव से रिक्शे वालों को, रेड़ी वालों को, इनको परेशानी ज़्यादा है, लेकिन व्यापार में परेशानी उतनी नहीं है जितनी कही जा रही है। ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि जो उद्योग जगत है उसका करेंसी पर भरोसा हट गया। बार बार लोग कहते हैं कि ये 2000 के नए नोट भी डिमोनेटाइज हो सकते हैं, 100 रुपए के नोट भी डिमोनेटाइज हो सकते हैं, तो एक थरथराहट है, एक धरधराहट है लोगों के, वो एक आशंका बन गई है कि अब हम क्या करें, और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था सहमी है वो मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि जो रुपया बैंक में जमा हुआ, अब आप इसको ही गणित कीजिए कि अगर 11.5 लाख करोड़ रुपया बैंक में जमा किया और सरकार ने 4 लाख करोड़ वापस दिया, तो 7.5 लाख करोड़ रुपया बैंक के पास नेट डिपॉजिट आ गए। मैं ये मानता हूं कि इसको अगर सरकार मुद्रा जारी भी कर दे इस मात्रा की, तो तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बचत को नोटों में रख रखा था, अब एक बार बैंक में जाने के बाद वो वापस उसको नोटों में नहीं लाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार के पास जो मुद्रा की अमाउंट है, जो धन का अमाउंट है, वो बढ़ेगा, लेकिन लोगों की जो कॉन्फिडेंस थी, जो जैसे आपके घर में अगर 10 लाख रुपया रखा हुआ या 10,000 रुपया रखा हुआ है, तो आपके खर्चा करने की गति एक अलग होती है। जब वो 10,000 रुपया बैंक में रखा हुआ है तो आपके खर्चा करने की गति अलग है। तो इस तरह जो ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का, वो नेगेटिव है, इसके कारण ज्यादा नुकसान हुआ है, बनस्पति इसके कि मुद्रा का अभाव है।
अगर इसको सीधे GDP की भाषा में समझें तो क्या GDP पर इसका असर देखने को मिल सकता है?
सबसे बड़ा जो असर होगा इसका कि देश का जो काला धन है, मेरा मानना है कि ये विदेश जाएगा। अब लोगों को, क्योंकि भारत में करेंसी, इंडियन करेंसी रखने में लोगों को भय उत्पन्न हो गया है, और सरकार कहे अनकहे इस बात के आशंका लोगों को बनी हुई है कि 2000 के नोट भी निरस्त हो जाएंगे, नए 500 के नोट भी निरस्त हो जाएंगे, और बेनामी प्रॉपर्टी पे सरकार प्रहार करने जा रही है। तो मेरा मानना है कि देश से धन जो है, काला धन जो है, लोग देश के अंदर रखने के बजाय बाहर ले जाएंगे, और जिसका प्रमाण है कि रुपए की वैल्यू टूट रही है। रुपए की वैल्यू टूट रही है, इसका मतलब लोग डॉलर ज्यादा खरीद रहे हैं और रुपए की सप्लाई ज्यादा है। तो इसके कारण एक तो GDP डाउन होगा, दूसरा ये GDP डाउन होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, जो आज उनके घर में थी, रोज उनके पैसे आ रहा था, जा रहा था, अब उसका एक हिस्सा बैंक में चला गया, और बैंक में एक बार जाने के बाद उसको लोग वापस निकालेंगे और वापस पुराने ढंग से खर्च करेंगे, इस पे मुझे शंका है। तीसरा कि जो छोटे उद्योगों को दिक्कत है, जो कैश ट्रांजैक्शंस पे एक कोई मोमबत्ती बनाता है, कागज के लिफाफे बनाता है, कोई कबाड़ी है, तो इन लोगों की जो समस्या है उसके कारण इनका धंधा डाउन हुआ है और इसका दूरगामी असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
ये थे जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुनझुनवाला। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और सुशील तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। बताएं सुशील,
आज इकबाल मेरे सामने ढेर सारे अखबार हैं। पहले हिंदी अखबारों से शुरू करते हैं। डिजिटल पेमेंट पर अब मिलेगा बड़ा डिस्काउंट और तलाक की खबर हर अखबार में। नवभारत टाइम्स की हेडिंग है डिजिटल पेमेंट पर अब मिलेगा बड़ा डिस्काउंट और कोर्ट ने कहा 3 तलाक अत्याचार। लेकिन मैं एक अलग खबर आपको बताता हूँ नवभारत टाइम्स की। नोटबंदी से गोलचा पड़ताल, एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो कहती है कि दिल्ली में करीब 5 सिनेमाघर जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर हैं वो नोटबंदी के कारण बंद हो गए हैं। ये अखबार की खबर है। अगर
मल्टीप्लेक्स के ज़माने में शायद इसकी खबर कम ही लोग लेते हैं।
और टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर जिक्र करूं तो वो कह रहे हैं कि साहब कैश स्टिललेस, गवर्नमेंट हैंड्स आउट शॉप्स फॉर गोइंग कैशलेस। और ट्रिपल तलाक की खबर है। अंडमान निकोबार में 1900 टूरिस्ट अभी भी बचाव के लिए वेट कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके, जो सुनामी का अलर्ट आया था उससे जुड़ी हुई घटना थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक तस्वीर छापी जो मुझे बहुत पसंद आई है। कल जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भुवनेश्वर कुमार ने एक थ्रो किया था
मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच
जी, तो वो जो थ्रो आया था वो लगा एम्पायर को और एम्पायर गिर गए और उसके बाद आना पड़ा डॉक्टर्स को और फिर ठीक हो गए एम्पायर। तो वो जो तस्वीर है बड़ी ही बड़ी खूबसूरत सी तो नहीं कहेंगे लेकिन आपका ध्यान खींचती है वो तस्वीर। राहुल गांधी का जो बयान है कि पेटीएम इज पे टू मोदी, उस खबर को उन्होंने लिया है। और राष्ट्रपति नाराज़ हैं क्योंकि संसद 17 दिन से नहीं चल रही है, तो उनका जो बयान है फॉर गॉड सेक प्लीज़ डू योर जॉब प्रेसिडेंट टिल्स पार्लियामेंटेरियंस, ये खबर लगभग सभी
और एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी ने भी नाराजगी जताई थी कि संसद नहीं चल पा रही
है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, साउथ दिल्ली बिगर्स टू बी फिंगर प्रिंटेड, दक्षिणी दिल्ली में जो भीख मांगते हैं उनका फिंगर प्रिंटिंग किया जाएगा। तो आप सोच लीजिए कल से आप अगर किसी भिखारी को भीख देते हैं तो वो भी सरकार के पास उसकी जानकारी जा सकती है क्योंकि फिंगर प्रिंटेड होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर, इट पेज टू स्वाइप द कार्ड गवर्नमेंट, और तस्वीर छपी है विपक्षी नेताओं की और जिसमें ये भी मज़ेदार तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी और सीताराम येचुरी और बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे सब लोग अपनी अपनी घड़ियाँ देख रहे हैं, राहुल गांधी अपना मोबाइल देख रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ आज फिर
जी,
क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर कौन हो सकता है? मुझे पता है कठिन सवाल है,
बिल्कुल तो जवाब भी आप जल्दी से दे दीजिए, वक्त भी कम है।
इनका नाम है पराग नंदा। तो पराग नंदा साहब हैं नई दिल्ली के और ये एक स्टोरी है इंडियन एक्सप्रेस की, वो कह रहे कि ये आने वाले दिनों में हो सकते हैं, ये फीचर स्टोरी है इंडियन एक्सप्रेस की।
बहुत शुक्रिया सुशील आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट बिहार से। 1981 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने उर्दू को बिहार की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया था, लेकिन पिछले 35 सालों में क्या कुछ भला हुआ उर्दू का, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं पटना से हमारे साथी मनीष शांडिल।
सरकारी जबान उर्दू में लिखे खतों का जवाब सरकार ही नहीं दे पा रही है। विधायक शकील अहमद खां के बीते करीब 1 साल के तजुर्बे से कुछ ऐसे ही हालात सामने आए हैं। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है। इस कानूनी हैसियत से थानों से लेकर सेक्रेटरिएट तक अगर कोई इस जबान में सरकारी कामकाज करना चाहे, स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाई करना चाहे तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। विधायक शकील बताते हैं,
लगभग 200 चिट्ठियां हैं मेरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर, इसलिए कि उसको डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग करनी है, डिस्ट्रिक्ट में वहां से चिट्ठी लेकर के मुख्यमंत्री तक। फिर हमने डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिखी, सबको चिट्ठियां लिखी उर्दू में। उर्दू में चिट्ठी सिर्फ ये लिखने का मतलब नहीं कि साहब मुझे अगर कोई मसला मेरे इलाके का है, ट्यूबवेल भी लगना है तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि मेरे इलाके में ट्यूबवेल नहीं है, उसको मैं उर्दू में चिट्ठी लिखता हूँ और मैं ये उर्दू सरकारी जुबान है तो सरकारी जवाब भी मुझे उर्दू में ही आएगा। तो अभी तक सिर्फ एक जगह से उर्दू डायरेक्टरेट के मेहरोत्रा साहब ने मेरे उर्दू खतूत का कई चिट्ठियां गई, उसके बाद उन्होंने जवाब लिखा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है आपने उर्दू में चिट्ठी लिखा है और हम ये उर्दू चिट्ठियों का जवाब उर्दू में ही आना चाहिए।
शकील उर्दू में खतों किताबत की अपने इस मुहिम के जरिए उर्दू की बदहाली को सामने लाते हुए इसे सुधारने की सूरत निकालना चाहते हैं। बिहार में जहां एक ओर स्कूल कॉलेजों में उर्दू टीचर्स की भारी कमी है तो दूसरी ओर सरकारी महकमों में इसके लिए ज़रूरी तर्जुमा निगारों और दूसरे मुलाजिमों की और इस कारण आम से लेकर खास तक परेशान हैं। सूबे में उर्दू के मौजूदा हाल से इस जबान के जरिए रोजगार की तलाश करने वाले नौजवानों में भी नाउम्मीदी घर कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी से PhD कर रही अफसा बानो के मुताबिक इस कारण उर्दू से लोगों का नाता भी टूट रहा है।
पोस्ट हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और अभी आई भी हैं तो 2 साल से हम लोगों ने खुद भी अप्लाई किया हुआ है लेक्चरशिप के लिए लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 साल से 8 साल से PhD करके बैठे हुए हैं तो उन लोगों के लिए फिर है कि अब वो कोई या तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें, अब बिजनेस लाइन में चले जाएं या किसी दूसरे लाइन में चले जाएं, फिर उर्दू से उनका नाता रिश्ता टूट जाता है। तो ये उर्दू के लिए मसला है क्योंकि अगर हम उर्दू में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं PhD उर्दू में कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे ले जाएं और चूंकि ये हमारी मादरी ज़बान है इससे हम लोगों को एक दिली लगाव है।
उर्दू को 1981 में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था। जानकारों का कहना है कि सरकार की मदद और ज़बान की तरक्की के लिए जो काम होना चाहिए था वो अब तक लगभग नहीं हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी कहते हैं,
दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पे उर्दू को जो बनाया गया, हुकूमत ने बनाया, ऐलान किया, तो पॉलिटिकल लेवल पे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिसीज़न था लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ज़मीन पर उतारने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए उसमें कभी सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आज हमको लगता है कि इसकी यूटिलिटी इतनी है कि 1600-1700 लोगों को अलग अलग वक्तों में जो नौकरी मिली उनका घर चल रहा है, लेकिन सरकार के आश्रय से जो तरक्की होती है या सरकार के सपोर्ट से जो काम होना चाहिए था वो लगभग नहीं हुआ। जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उनका कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ऐसा काल है कि जब उर्दू एडवाइजरी कमेटी की जो एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन हुआ उसमें 8 ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषी ही नहीं थे।
हालांकि हालात धीरे धीरे थोड़े सुधर रहे हैं। सोमवार को असेंबली में उर्दू में सरकारी काम करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में बिहार सरकार ने यकीन दिलाया कि ऐसा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लंबी खींचतान के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नवंबर के महीने में सरकारी स्कूलों में करीब और 4000 उर्दू टीचर्स को तैनात किया है। यूनिवर्सिटीज में 100 के करीब उर्दू लेक्चरर्स की बहाली की तैयारी भी चल रही है। वहीं उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर इम्तियाज अहमद करीबी के मुताबिक सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी खाली पड़े ओहदों पर बहाली की बात आगे बढ़ी है।
दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिए जाने के बाद पोस्ट क्रिएट किया गया ब्लॉक से लेकर जिला और स्टेट तक। अभी उसमें 365 पोस्ट खाली है। अब एग्जामिनेशन होना है और एग्जामिनेशन के बाद उस पर बहाली होगी। इसके अलावा और ज़रूरतें समझी जा रही हैं कि जिन ज़िलों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, जिन ब्लॉकों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, जिन थानों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है और वहाँ के पोस्ट क्रिएशन के लिए उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने फाइलें बना करके भेजी है।
एक अंदाजे के मुताबिक सरकारी महकमों में ऐसे करीब और 1700 मुलाजिमों की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि उर्दू की बेहतरी के लिए टीचर, तर्जुमा निगार और दूसरे इंतजाम किए जाने चाहिए और ऐसा मुमकिन है। इससे न केवल उर्दू बोलने लिखने वाली लाखों की आबादी को सहूलियत होगी बल्कि एक बहुत ही प्यारी जबान को जरूरी सरकारी सहारा भी मिलेगा। मनीष चांडिली, BBC पटना।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और जाते जाते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। रूस ने कहा है कि सीरिया की सेनाओं ने पूर्वी अलेप्पो में विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष रोक दिया है ताकि हजारों की संख्या में आम नागरिक वहां से निकल सकें। भारत सरकार ने 1,00,000 गांवों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीद बिक्री के लिए 2 मशीनें लगाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया के 1/4 किशोर बच्चे उन देशों में रह रहे हैं जो संघर्ष, संकट या प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। अमरीकी सेना का कहना है कि पिछले 2 साल में इराक और सीरिया में अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेनाओं की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के कम से कम 50,000 लड़ाके मारे गए हैं। अमरीका के पूर्व सांसद और अंतरिक्ष यात्री रहे जॉन ग्लिन का निधन हो गया है। 1998 में 77 साल की उम्र में वो डिस्कवरी शटल में अंतरिक्ष जाकर सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। सोमालिया के व्यापारियों का कहना है कि सऊदी अरब ने सोमालिया से जानवरों की खरीद फरोख्त बंद कर दी है। व्यापारियों के अनुसार जानवर में रिफ्ट वैली फीवर बीमारी पाए जाने के बाद ये खरीद फरोख्त बंद हुई है। BBC समाचार।
तो नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।